एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर ईशरवुड की एक बहुत ही मशहूर किताब द बर्लिन स्टोरीज पर।
जी, ईशरवुड वो 20वीं सदी के उन लेखकों में से हैं जिन्होंने बदलते यूरोप को और हाँ, व्यक्तिगत पहचान को भी बहुत ही बारीकी से देखा और लिखा।
बिल्कुल, W.H. ऑर्डन जैसे बड़े नामों के साथ उनका जिक्र होता है। और ये किताब द बर्लिन स्टोरीज, ये असल में दो अलग अलग नोवेला को मिलाकर बनी है ना?
हाँ, सही कहा। मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन्स, जो 1935 में आई, और गुड बाई टू बर्लिन 1939 की, इनको फिर 1945 में एक साथ छापा गया।
और इसकी अहमियत, मतलब क्यों ये इतनी खास मानी जाती है?
इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये हमें सीधे 1930s के शुरुआत वाले बर्लिन में ले जाती है। वो वाइमार रिपब्लिक के आखिरी दिन थे, एक ऐसा शहर जहां एक तरफ तो आज़ादी थी, कला थी, नाइट लाइफ थी, और दूसरी तरफ वो नाजीवाद का अंधेरा गहरा रहा था। राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, डर, और ईशरवुड ने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा। वो वहीं रह रहे थे 1929 से 33 तक,
और उन्होंने इसे लिखा अपनी उस मशहूर कैमरा आई वाली तकनीक से, मतलब एक तटस्थ दर्शक की तरह।
हाँ बिल्कुल, जैसे कैमरा बस रिकॉर्ड करता है बिना कोई राय दिए। तो आज हम इसी उथल पुथल भरे दौर को, वहां के लोगों को और ईशरवुड के इस नज़रिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, क्योंकि वो बर्लिन वाकई एक अजीब, एक मिलीजुली जगह रही होगी।
बिल्कुल, सोचिए जरा, एक तरफ वो कैबरे, वो आर्ट सीन, वो आज़ाद ख्याली, और उसी वक्त सड़कों पर राजनीतिक झगड़े, हिंसा, एक अजीब सा तनाव हमेशा हवा में रहता होगा।
किताब पढ़ते हुए वो महसूस भी होता है जैसे किसी बहुत रंगीन पर्दे के पीछे कुछ बहुत डरावना छुपा हो।
सही कहा, और यही शायद किताब का मूल भाव है, एक ढहती हुई, एक खत्म होती हुई दुनिया का गवाह बनना, उसे दर्ज करना।
और कहानी का जो नैरेटर है क्रिस्टोफर, जो काफी हद तक खुद ईशरवुड का ही अक्स है, वो सिर्फ गवाह नहीं रहता, उसका हिस्सा भी बन जाता है ना?
जी हाँ, वो दर्शक भी है और भागीदार भी। और यहीं से वो सवाल उठता है कि एक कलाकार की, एक देखने वाले की जिम्मेदारी क्या है? क्या वो तटस्थ रह सकता है जब उसके चारों ओर अन्याय हो रहा हो?
ये एक बड़ा सवाल है।
तो कहानी शुरू कैसे होती है? क्रिस्टोफर बर्लिन आता है, एक नौजवान अंग्रेज लेखक।
हाँ, कुछ लिखने की तलाश में, शायद कुछ अनुभव की तलाश में।
बिल्कुल, उसे लगता है कि बर्लिन उसे वो खुलापन, वो कच्चा माल देगा जो उसे इंग्लैंड में नहीं मिल रहा था, और बर्लिन उसे देता भी है। वो सस्ते कमरों में रहता है, लोगों से मिलता है,
और फिर उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो कहानी का और शायद उसकी जिंदगी का भी रुख बदल देते हैं।
हाँ, और ये लोग ही इस किताब की जान है। ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये उस वक्त के बर्लिन के अलग अलग चेहरे हैं।
तो चलिए जरा इन किरदारों पर बात करते हैं। इन्हीं के जरिए ईशरवुड ने उस दौर की कहानी बुनी है।
जरूर, सबसे पहले तो खुद क्रिस्टोफर, वो शुरू में खुद को एक कैमरा कहता है।
आई एम अ कैमरा विद इट्स शटर ओपन, क्वाइट पैसिव, रिकॉर्डिंग, नॉट थिंकिंग, यही कहा था ना उसने?
हाँ बिल्कुल, जिसका शटर खुला है बस रिकॉर्ड कर रहा है, सोच नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो बर्लिन के लोगों से घुलता मिलता है, खासकर सैली बोल से, लैंडोर परिवार से, उसका ये कैमरा वाला नजरिया टिक नहीं पाता।
मतलब वो कैमरा महसूस करने लगता है।
हाँ, वो तटस्थ नहीं रह पाता, उसे उनकी तकलीफें, उनकी मजबूरियां छूने लगती हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहता।
अच्छा, और किरदारों में मिस्टर नॉरिस, वो भी एक दिलचस्प किरदार है।
ओहो, आर्थर नॉरिस, मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन्स का हीरो, या कहे एंटी हीरो, एक अजीब सा अंग्रेज जो बर्लिन में रहता है। बाहर से बहुत सभ्य, बहुत शिष्ट लगता है,
पर अंदर से
पूरी तरह खोखला। उसकी पूरी पर्सनालिटी ही नकली है, वो विग पहनता है, उसकी आदतें अजीब हैं, और नैतिक तौर पर वो दिवालिया है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
जैसे
वो कम्युनिस्टों के लिए भी काम करता है, पुलिस के लिए जासूसी भी। क्रिस्टोफर उससे दोस्ती करता है, पर धीरे धीरे उसे नॉरिस की असलियत पता चलती है। वो उस समाज के भ्रष्टाचार का, नैतिक पतन का एक जीता जागता उदाहरण है।
उसमें एक अजीब सा चार्म भी बताया गया है, पर वो दयनीय भी है।
हाँ, यही विरोधाभास है, वो आकर्षक भी लगता है और घिनौना भी।
जैसे शायद वो शहर खुद था, बाहर से आकर्षक, अंदर से बीमार। और सैली बोल्स, शायद सबसे मशहूर किरदार।
हाँ, सैली बोल्स, वो तो जैसे बर्लिन की बेगराम, थोड़ी लापरवाह आत्मा है, एक अंग्रेज लड़की जो कैबरे सिंगर बनने आई है, जिंदगी को भरपूर जीना चाहती है।
पर उसमें टैलेंट उतना नहीं है ना?
नहीं, टैलेंट की कमी है, दिशा की भी कमी है। वो बहुत आकर्षक है पर उतनी ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी। उसकी कहानी उस बर्लिन की चमक दमक के पीछे की सच्चाई दिखाती है, वो चमक जिसके पीछे उदासी है और आने वाले खतरे से एक तरह की बेखबरी।
क्रिस्टोफर और सैली की दोस्ती भी काफी कॉम्प्लेक्स बताई जाती है।
हाँ, बहुत गहरी पर उलझी हुई दोस्ती है। फिर वो वाक्य आता है जब सैली प्रेग्नेंट हो जाती है और अबॉर्शन का फैसला करती है, क्रिस्टोफर उसका साथ देता है। ये घटना उस दौर की तथाकथित सेक्सुअल फ्रीडम के पीछे की मुश्किल सच्चाइयों को सामने लाती है।
और उसकी राजनीतिक उदासीनता, इशरवुड ने लिखा है कि वो जानबूझकर राजनीति से दूर रहती थी, इसका क्या मतलब है?
ये बहुत अहम है। सैली जैसे लोग उस वक्त शायद बहुत थे, उन्हें लगता था कि राजनीति से हमारा क्या लेना देना। नाजी ताकतवर हो रहे हैं, सड़कों पर माहौल खराब हो रहा है, पर सैली अपनी दुनिया में है।
तो ये दिखाता है कि आम लोगों की ये उदासीनता भी कहीं ना कहीं उस माहौल को बनने में मदद करती है।
बिल्कुल, जब इतिहास आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तब आप आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपकी उदासीनता भी एक तरह का पक्ष लेना बन जाती है।
और फिर लैंडोवर परिवार,
उनकी
कहानी शायद सबसे ज्यादा छूने वाली है।
हाँ, वाकई। नतालिया लैंडोर और उसका कजिन बर्नार्ड, वो बर्लिन के पढ़े लिखे अमीर यहूदी समुदाय से हैं। उनका बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, समाज में रुतबा है। शुरू में वो खुद को पूरी तरह जर्मन समझते हैं,
लेकिन जैसे जैसे नाजी माहौल बनता है
उनकी दुनिया सिकुड़ती जाती है। क्रिस्टोफर नतालिया को अंग्रेजी पढ़ाने जाता है तो वो ये बदलाव बहुत करीब से देखता है, कैसे डर और असुरक्षा उनकी जिंदगी में घर कर लेती है। उनके स्टोर का बॉयकॉट होता है।
और बर्नार्ड का क्या होता है?
बर्नार्ड को नाजी मार देते हैं और नतालिया को देश छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी कहानी सीधे सीधे दिखाती है कि नफरत कैसे जिंदगियां तबाह करती है। ये होलोकॉस्ट की आहट है जो साफ सुनाई देती है।
इन बड़े किरदारों के अलावा भी तो छोटे किरदार हैं जो समाज की तस्वीर पूरी करते हैं।
जी हाँ, बहुत से हैं। जैसे क्रिस्टोफर की मकान मालकिन फ्रॉलिन श्रूडर, हम देखते हैं कि कैसे उनकी राय धीरे धीरे बदलती है, वो नाजियों की तरफ झुकने लगती हैं। या फिर ऑटोनोवा का परिवार जो वर्किंग क्लास की गरीबी और उनकी हताशा को दिखाता है।
तो ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि कैसे समाज संकट के समय रिएक्ट करता है।
बिल्कुल, कोई विरोध करता है, कोई साथ हो लेता है, कोई बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा रहता है।
चलिए अब जरा कहानी के स्ट्रक्चर पर आते हैं। दो हिस्से हैं। पहला, मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन्स। ये एक तरह की डार्क कॉमिक थ्रिलर जैसी है।
हाँ, कुछ हद तक। इसमें क्रिस्टोफर, जिसे यहाँ विलियम ब्रैडशॉ कहा गया है, की मुलाकात ट्रेन में आर्थर नॉरिस से होती है। नॉरिस उसे बर्लिन की रंगीन पर खतरनाक दुनिया में खींच लेता है
और पता चलता है कि नॉरिस तो जासूसी और अजीब व गरीब राजनीति खेलों में फंसा है।
जी, कहानी नॉरिस के झूठ, उसके धोखों और उसके बचने की कोशिशों के इर्द गिर्द घूमती है। क्रिस्टोफर थोड़ी दया और थोड़ी घिन के साथ उसके भागने में मदद भी करता है।
और आखिर में नॉरिस भाग जाता है।
हाँ, भाग जाता है। पर यह साफ हो जाता है कि नॉरिस सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं था, वो उस बीमार समाज का एक लक्षण था, एक प्रोडक्ट था।
और दूसरा हिस्सा, गुड बाई टू बर्लिन, ये अलग है। ये एक सीधी कहानी नहीं है।
नहीं, ये बर्लिन की जिंदगी के अलग अलग स्केचेस, अलग अलग झलकियों का कलेक्शन है। यहाँ क्रिस्टोफर का वो कैमरा वाला अंदाज ज्यादा साफ दिखता है।
लेकिन क्या वो यहाँ भी उतना ही तटस्थ रह पाता है?
नहीं, यहाँ उसका भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता जाता है। इसमें ए बर्लिन डायरीज जैसे हिस्से हैं जहाँ वो अपने बोर्डिंग हाउस, पड़ोसियों के बारे में लिखता है, वहाँ की गरीबी, नाइट लाइफ, सड़कों का तनाव, सब कुछ।
और सैली बोल्स की पूरी कहानी इसी हिस्से में?
हाँ, सैली की कहानी इसी में है, उसकी दोस्ती, उसका जीवन। फिर एक हिस्सा है ऑन रूगन आइलैंड, जहाँ वो दोस्तों के साथ बाल्टिक तट पर छुट्टियां मनाने जाता है। वहाँ भी क्लास, सेक्सुअलिटी, ईर्ष्या जैसे मुद्दे सामने आते हैं।
और नोवाक परिवार वाला हिस्सा?
द नोवाक्स। इसमें वो मजदूर वर्ग के जीवन को बहुत करीब से देखता है, उनकी गरीबी, उनके संघर्ष को महसूस करता है। यहाँ क्रिस्टोफर अब सिर्फ बारी ऑब्जर्वर नहीं रहता, वो उनके दुख सुख में शामिल हो जाता है।
और सबसे गहरा असर डालने वाला हिस्सा शायद द लैंडोर्स है।
हाँ, क्योंकि यहाँ नाजीवाद का असर बहुत सीधा और क्रूर है। लैंडोवर परिवार का बिखरना, बर्नार्ड की मौत, नतालिया का भागना, ये सब पाठक को हिला देता है।
और फिर किताब के आखिर में?
आखिर में अ बर्लिन डायरी, विंटर 1932-33 है। ये वाइमर रिपब्लिक के बिल्कुल आखिरी दिन है। हिटलर चांसलर बन चुका है, रीश्टाक में आग लग चुकी है, माहौल पूरी तरह बदल गया है,
डर और अनिश्चितता का माहौल।
हाँ, सड़कों पर नाजी नारे, बूटों की आवाज, दोस्त गायब हो रहे हैं, और फिर क्रिस्टोफर बर्लिन छोड़ देता है। ये सिर्फ एक शहर को अलविदा कहना नहीं है, ये एक पूरे युग को, एक पूरी दुनिया को अलविदा कहना है, एक बहुत दर्दनाक गुड बाय।
इन कहानियों के जरिए ईशरवुड कई गहरे सवाल भी उठाते हैं, जैसे वो दर्शक की दुविधा। क्या सिर्फ देखना, सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी है?
बिल्कुल नहीं। और क्रिस्टोफर का अपराध बोध, खासकर बर्नार्ड की मौत के बाद, वो लिखता है ना, इट इज द गिल्टी फीलिंग ऑफ द सर्वाइवर, ये जीवित बचे व्यक्ति का दोषी एहसास है। ये दिखाता है कि उसका वो कैमरा वाला मुखौटा उतर चुका है,
वो अब जिम्मेदार महसूस कर रहा है।
हाँ, और वो सवाल भी कि क्या मुश्किल वक्त में न्यूट्रल रहा जा सकता है। सैली बोल्स जैसे किरदारों को देखकर लगता है कि आपकी निजी उदासीनता भी एक तरह की मिलीभगत बन सकती है।
साथ ही ये किताब ये भी दिखाती है कि फांसीवाद जैसा खतरा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जड़े जमाता है।
जी, छोटी छोटी घटनाओं से, लोगों के रवैये में बदलाव से, आर्थिक डर और पुरानी नफरतों का फायदा उठाकर फ्रॉलिन श्रॉडर का धीरे धीरे नाजी समर्थक बन जाना, ये इसका अच्छा उदाहरण है।
और एक थीम जो पूरी किताब में महसूस होती है वो है अलगाव, या बाहरी होने का एहसास।
हाँ, निर्वासन और अलगाव। क्रिस्टोफर खुद बाहरी है, सैली बाहरी है, नॉरिस भी, लैंडावर यहूदी होने के नाते बाहरी बना दिए जाते हैं। ये सब किरदार कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाश रहे हैं, एक अपनेपन की तलाश में हैं। ये उस दौर की बेचैनी को दिखाता है।
ईशरवुड की लिखने की शैली की बात करें तो वो बहुत सीधी सपाट लगती है, जैसे कोई रिपोर्ट लिख रहा हो।
वो कैमरा आई वाला अंदाज, इससे एक तरह की सच्चाई, एक ऑब्जेक्टिविटी का भ्रम पैदा होता है। लगता है कि लेखक बस वही दिखा रहा है जो है,
लेकिन असल में वो बहुत कुशलता से चुनता है कि क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है।
बिल्कुल, वो पाठक की प्रतिक्रिया को गाइड करता है बिना सीधे सीधे कुछ कहे, और वो डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं माहौल बनाने के लिए। कैबरे का शोर, धुआं, बूटों की आवाज, गरीबी की गंध, ये सब महसूस होता है।
और विडंबना का इस्तेमाल भी खूब है। हम पाठक जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वर्ल्ड वॉर, होलोकास्ट, लेकिन किरदार अनजान है।
हाँ, और ये जानकारी कहानी को और भी मार्मिक, और भी त्रासद बना देती है। सैली का भविष्य के सपने देखना, जबकि हमें पता है कि बर्लिन का और उसका भविष्य क्या है, ये बहुत असरदार है।
सैली के बारे में वो लाइन भी बहुत सटीक है, वह एक महान पापी बनने के लिए दृढ़ थी, लेकिन मजेदार बात ये थी कि वो नहीं जानती थी कि कैसे।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसकी सारी बगावत, उसकी वो तथाकथित बुराई भी एक तरह का परफॉर्मेंस थी, उसमें गहराई कम थी, वो बस एक रोल प्ले कर रही थी,
शायद उस शहर की तरह ही।
हाँ, शायद, जो बाहर से जितना वाइब्रेंट था, अंदर से उतना ही नाजुक और खोखला होता जा रहा था।
तो कुल मिलाकर ये किताब पाठक पर एक गहरा, शायद थोड़ा भारी असर छोड़ती है। ये सिर्फ गुजरे वक्त की कहानी नहीं लगती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक चेतावनी जैसी है। ये दिखाती है कि सभ्यता, सहिष्णुता, आज़ादी, ये सब कितने नाजुक हैं, कितनी आसानी से सब कुछ बदल सकता है, बिगड़ सकता है।
पर क्या इसमें सिर्फ अंधेरा ही है, या उम्मीद की कोई किरण भी है?
उम्मीद भी है, वो इंसानी रिश्तों में दिखती है, क्रिस्टोफर की दोस्ती में, मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने में। ये दिखाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी इंसानियत की छोटी छोटी चिंगारियां बाकी रहती हैं।
तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े लोगों या बड़ी घटनाओं से नहीं बनता।
हाँ, वो आम लोगों के रोजमर्रा के फैसलों, उनकी चुप्पी, उनकी आवाज, उनकी उदासीनता या उनके साहस का नतीजा होता है।
और ये कि स्वतंत्रता और सहिष्णुता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उन्हें लगातार बचाए रखने की जरूरत होती है।
बिल्कुल, ये एक सबक है जो आज भी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।